दिन भर 11 अप्रैल मंगलवार सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे।
इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा
वो करेंगे।
आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे।
झारखंड में एक गीत को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन। सरकार ने कहा अलग अलग चरणों में लागू करेंगे।
जहाँ कॉलेज है, जहाँ स्कूल है, जहाँ पवित्र धार्मिक स्थल है, वहाँ कोई दारू की दुकान नहीं होगी, ये निर्देश भी मैंने दे दिए हैं।
खबरें होंगी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की बैठक से भी और साथ ही खेल के मैदान से भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारत सरकार ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए हर कदम उठाएगी। कुलभूषण जाधव को कल पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। बीते साल मार्च में गिरफ्तार हुए जाधव पर पाकिस्तान में जासूसी करने का आरोप लगा था। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज राज्यसभा में कहा कि जाधव को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो किया जाएगा। इस मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। जाधव की सजा के खिलाफ देश के कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए हैं। रूस का कहना है कि इस हफ्ते के आखिर में रूस, सीरिया और ईरान के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। ये बैठक मॉस्को में होगी। रूस और ईरान सीरिया की बशर अल असद सरकार का समर्थन कर रहे हैं। सीरिया में हुए रासायनिक हमले के बाद से अमरीका और दूसरे पश्चिमी देश असद सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को अलग करने के लिए रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की मांग खारिज कर दी गई है। ये मांग ब्रिटेन ने रखी थी। इटली के विदेश मंत्री ने कहा कि वह रूस को किनारे में नहीं धकेलना चाहते बल्कि बातचीत को प्राथमिकता देते हैं। G7 की बैठक के बाद अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा कि रूस को असद के समर्थन के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। उन्होंने कहा मैं उम्मीद करता हूं कि रूस की सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि उन्होंने बशर अल असद के रूप में एक अविश्वसनीय साझेदार को साथ जोड़ लिया है। उन्होंने रासायनिक हथियारों को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अब इन हालात में असद की वजह से रूस खुद को अच्छी स्थिति में नहीं पा रहा होगा। रूस को यह सोचना चाहिए कि क्या असद और ईरान के साथ सहयोग उसके हित में है या फिर रूस अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के साथ साझेदारी करना चाहेगा जो सीरिया संकट का समाधान चाहते हैं। ये थे अमेरिकी विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लीबिया से मिली रिपोर्टों के मुताबिक बंधक बनाए गए अफ्रीकी प्रवासियों को गुलाम की तरह बेचा जा रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है कि इस मामले को लेकर उसे पीड़ितों से जानकारी मिली है। इन लोगों को मिलिशिया समूहों या फिर मानव तस्करों ने पकड़ा था। इसके बाद उन्हें चौराहों या फिर पार्किंग में ले जाकर गुलामों की तरह बेचा गया। खरीदने वाले उन्हें जेल नुमा जगहों में रखते हैं और काम करने के लिए मजबूर करते हैं। उनमें से कई ने उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बीते हफ्ते हुए लॉरी हमले के संदिग्ध को कोर्ट में पेश किया गया। संदिग्ध रखमत अकलफ के वकील ने कहा कि उन्होंने हमला करने की बात कबूल कर ली है। सुनवाई के बाद इस मामले के अभियोजक हांस अरमैन ने बताया हम इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि मैं और मेरे सहयोगी सभी दोषियों को कोर्ट के सामने पेश करने की हर संभव कोशिश करेंगे। इस मामले में एक ही व्यक्ति शामिल था या फिर इससे ज़्यादा लोग शामिल थे, अभी हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं। ये हमारा मुख्य मकसद है।
समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय और बीबीसी रेडियो पर दिन भर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में पकड़े गए भारत के कुलभूषण जाधव को वहां की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। इसे लेकर आज भारत में हलचल तेज हो गई। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी के स्वर में कहा कि वो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बारे में सोचें कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। आज संसद के दोनों सदनों में सभी सदस्यों ने जाधव को फांसी की सजा दिए जाने की निंदा की। लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि सरकार कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक रिपोर्ट के साथ दिल्ली से सलमान रावी।
I would caution the Pakistan government to consider the consequences of our bilateral relationship if they proceed on this matter.
मैडम स्पीकर,
ये हैं भारत सरकार की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, जो कह रही थी कि मैं पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी दे रही हूं कि वो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बारे में सोचे कि इसके परिणाम क्या होंगे अगर वो भारत के नागरिक के खिलाफ इस तरह की एक तरफा कार्रवाई जारी रखता है। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में सभी सदस्यों ने जाधव को फांसी की सजा दिए जाने की निंदा की। लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि सरकार कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
फांसी की सजा जो सुनाई गई है, अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार उसे स्ट्रांगली कंडेम करती है। और मैं यह भी सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो लॉ एंड जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं उसको बिना ध्यान में रखे यह फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण जाधव को। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी।
लोकसभा में ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से कहा कि कुलभूषण जाधव का मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए।
पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत एक अदालत नहीं है, बल्कि एक बनाना अदालत है, जहां पर बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रूफ के उन्होंने फैसला दिया है। यकीनन इस शख्स को, हमारे हिंदुस्तान के शहरी को, एक धोखा देकर ईरान से उसको पकड़कर लाए और सारी दुनिया के सामने इस तरह का एक नाटक कर रहे हैं। तो मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे।
दूसरी तरफ राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने वही सवाल उठाया जो लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया था।
जो काम पाकिस्तान खुद करता है हमारे देश में, वही इल्जाम हमारे पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो वहां की फौज ने किया वो तो किया है, लेकिन इसके बाद दो और मरहले हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा केस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या हमारी सरकार उसमें पूरी मदद करे कि ऐसे वकील उसके पास हों?
गुलाम नबी आजाद के सवाल पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा,
मैं बहुत शुक्रगुजार हूं नेता प्रतिपक्ष भाईजान गुलाम नबी आजाद की, जिन्होंने ये कहा कि ये विषय पक्ष और विपक्ष का नहीं है, नहीं। सरकार और विरोध पक्ष का नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे भारत का है। जहाँ तक उन्होंने हमसे पूछा है मदद करने की बात, ये तो बहुत छोटी बात आपने कही। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो बड़े से बड़ा वकील, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट से नहीं, इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, जिस दिन से ये घटना घटी है तब से लेकर लगातार मैं उनके लोगों के संपर्क में हूँ, उनके माता पिता के संपर्क में हूँ, 3 बार उन्हें यहाँ मिल चुकी हूँ, कम से कम 6 बार उनसे फोन पे बात कर चुकी हूँ। और अभी इस घटना से पहले कोई संयोग था, पिछले मंगलवार भी, सोमवार और मंगलवार दोनों दिन मैं उनसे यहाँ मिली हूँ। इसलिए हम लोग बिल्कुल संपर्क में हैं। ये विषय पूरे, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान, हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे। और किसी ना किसी तरह से
बहरहाल कुलभूषण जाधव के पास पाकिस्तान की मिलिट्री की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 1 हफ्ते का समय है। इस बीच दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने विरोध प्रदर्शन भी किए गए, जिसमें जाधव की रिहाई की मांग की गई। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
ये तो हुई संसद की बात। कुलभूषण जाधव को लेकर कुछ लोगों ने आज दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन किया और पाकिस्तान से उन्हें छोड़ने की मांग की।
जी, मेरा नाम फैयाज अली है। हम तमाम जो है हिंदुस्तानी ये चाहते हैं कुलभूषण जाधव जो है बेगुनाह है और उसको जल्द से जल्द जो आज़ाद किया जाए। अगर जो है पाकिस्तान उसको आज़ाद नहीं करता तो पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा जो टेररिस्ट है और जो है वो सबसे बड़ा जो है कातिल भी है।
मेरा नाम राजू पाशा है। हमारी मांग ये है कि जो हमारा कुलभूषण जाधव को जो उन्होंने अरेस्ट किया है तो उसको नजायज जो सज़ा दी है उन्होंने फांसी की, वो माफ़ होनी चाहिए। और अगर वो उसको माफ़ नहीं करते तो हमारी अपनी इंडिया सरकार से हमारी अपील है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें।
पाकिस्तान ये उकसावे की हरकत कर रहा और ये हरकत जो है सही बात है कि दो नेशन के बीच में नफरत को बढ़ावा दे रही है। मैं पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी फरमा रवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप वहाँ बैठ करके पूरी दुनिया में जो नफरत का माहौल फैला रहे हो, वही नफरत जो है भारत में फैलाने की कोशिश मत करो। और ये हमारे जो भाई यादव है, कुलभूषण यादव, इसको जितनी जल्द हो आप इसको रिहा कर दीजिए। और फेयर ट्रायल आपने किया नहीं है, सबसे बड़ा आपके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि आपने विदाउट फेयर ट्रायल के इसको फांसी की सजा दे दी।
ये थे भारत के आम लोग जो मांग कर रहे थे पाकिस्तान की सरकार से कि वो कुलभूषण जाधव को रिहा कर दें। उधर पाकिस्तान से खबर आई है कि कुलभूषण जाधव को जो मौत की सज़ा सुनाई गई है उसके खिलाफ अपील करने के लिए उनके पास 60 दिन का वक्त है। मैंने भारत में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पूर्व संयुक्त निदेशक जनरल वीके सिंह से पूछा कि कुलभूषण जाधव को छुड़ाने के लिए भारत क्या कर सकता है, तो उनका कहना था
भाई बचाया जा सकता है, वो इंडिया के सिटीजन है और हिंदुस्तान को ये अधिकार है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात करने दी जाए। पाकिस्तान में जो एम्बेसी में हमारे लोग हैं, एम्बेसडर हैं, और उन्होंने अभी तक कौंसलर एक्सेस नहीं दिया। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि संगीन से संगीन जुर्म हो आप अपनी कार्रवाई करते रहिए, मगर दूसरे देश का अगर कोई आदमी है तो उस कंट्री को आप कैसे रोक सकते हैं कि उससे वो बातचीत नहीं करे। और अगर हमको कौंसलर एक्सेस दी गई तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका लीगल डिफेंस वगैरह भी तैयार कर लेंगे। उसमें प्रोविजन हैं जो भी किस तरीके से उनका डिफेंस हो सकता है वो किया जाएगा, मगर उसके लिए पहले पाकिस्तान को जो नॉर्मल प्रोटोकॉल हैं, रूल्स हैं, वो तो फॉलो करने चाहिए। जिनेवा कन्वेंशन में नहीं फॉलो कर रहे हैं वो लोग, ये तो मैं पहली बार ऐसे सुन रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है।
ये जो कहा जा रहा है कि वो भारत के जासूस थे, रॉ के लिए काम करते थे, तो इन दावों में कितनी सच्चाई देखते हैं आप?
भाई मुझे तो नहीं लगता कि इसमें सच्चाई है, मगर ऐसा है, अगर उनके पास कुछ है सबूत ऐसा कि वो जासूसी कर रहे थे, फिर भी वो जासूस का आप सही तरीके से मुकदमा चलाइए, उसका ट्रायल करिए और हिंदुस्तान को उससे मिलने की तो इजाजत होनी चाहिए। फिर आप जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि कहाँ ट्रायल हुआ, उसको उनको कोई डिफेंस काउंसिल वकील दिया गया कि नहीं, ये सब बातें मालूम होनी चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि वो ट्रायल हुआ भी है कि नहीं। अब तो वो कह रहे हैं कि हमने ट्रायल किया था, मगर आप कैसे यकीन कर लें कि हाँ ट्रायल किया गया था।
आपने कहा कि आपको नहीं लगता कि वो स्पाइंग कर रहे होंगे, क्यों ऐसा आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आप?
जी मतलब मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो नेवी के ऑफिसर थे, सर्विंग नेवल ऑफिसर थे, और रॉ जो है वो किसी ऐसे सर्विंग ऑफिसर को ऐसे काम के लिए दूसरे देश में जासूसी करने नहीं भेजती है। हाँ वो दूसरे देश में एम्बेसीज में हमारे मिलिट्री अटैचेज हैं और नेवी के, फोर्स के, जिसके भी है आप वहाँ पोस्ट कर दीजिए, मगर वो लोग खुद ऐसे जाकर के ओपनली जासूसी कर रहे हैं ऐसा नहीं होता। वहाँ के लोकल किसी को आप जासूस के तौर पर इस्तेमाल कर दीजिए, पैसा रुपया दे के जो भी, या यहाँ हिंदुस्तान से भेज दीजिए, ये सब तो होता है, सब देश करते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि वो एक नेवल ऑफिसर होते हुए वो ऐसे जासूसी करेंगे, वो भी रॉ के लिए। अगर करना भी होगा तो वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से जाएंगे, रॉ की तरफ से क्यों जाएंगे जासूसी करने, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे।
कोई ऐसी घटना जबकि भारत के किसी जासूस को पाकिस्तान में पकड़ा गया हो या पाकिस्तान के किसी जासूस को भारत में पकड़ा गया हो, आपको याद है कोई घटना ऐसी?
नहीं, अब पकड़े तो कई जाते हैं, अब क्या होता है जो वहाँ के यहाँ पे जासूसी करने पकड़े जाते हैं उसका तरीका ये नहीं होता कि आप उसको मुकदमा करके फांसी दीजिए, उसका तरीका है कि आप उसको पीएनजी पर्सना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करते हैं, एम्बेसी में होता है तो कहते हैं भाई ये जासूसी कर रहा था आप इसको ले जाइए वापस, फिर वो देश उसको वापस बुला लेता है। ये हमारे यहाँ देश में कई बार हुआ है, पाकिस्तान के लोगों को वो लोग वापस ले गए हमारे, और अगर आप बोलोगे ये दो आदमी हमने पकड़े हैं तो वो भी नाम के लिए दो आदमी का नाम देंगे कि हमारे यहाँ भी ये कर रहे थे आप भी इनको ले लीजिए, तो ये तो टिट फॉर टैट चलता रहता है, हर देश में होता ही है, मगर ये नहीं होता कि आपने किसी को ऐसे पकड़ा वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या सर्विंग आर्म्ड फोर्सेज ऑफिसर हो आप उसको फांसी दे दें, ये तो मैं पहली बार।
रॉ के पूर्व संयुक्त निदेशक जनरल वीके सिंह से ये बातचीत मैंने अब से कुछ ही देर पहले की थी। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर, निखिल रंजन के साथ। अभी अभी खबर आई है कि कश्मीर में लोकसभा उपचुनाव के बाद अब 32 पोलिंग सेंटर पर दोबारा मतदान के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की गई है। भारी हिंसा के कारण वहां पहले ही आशंका जताई गई थी कि दोबारा चुनाव होंगे। हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि इतनी जल्दी दोबारा चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। इस बारे में जानकारी के लिए मैंने बात की है श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से।
जी देखिए, ये तो उन्होंने 9 तारीख को ही शाम को जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उन्होंने जब ब्यौरा दिया था कि कहाँ क्या हुआ, किस तरह से घटनाएं घटी, तो उन्होंने ऐसे 38 पोलिंग बूथ्स का नाम लिया था, मतदान केंद्रों का नाम लिया था, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया और उसके बाद पोलिंग स्टाफ और सीआरपीएफ के कर्मचारी जो है वो बूथ छोड़कर निकल गए थे और फिर प्रदर्शनकारियों ने वो ईवीएम जिनमें जितने भी वोट पड़े थे तो ईवीएम्स को सड़क पे तोड़ दिया था। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि हम जल्दी ही इसकी घोषणा करेंगे कि इन क्षेत्रों में हम कब जो है रीपोल कराएंगे। तो इन्होंने बहुत जल्दी ही ये ऐसी तो कोई संभावना नहीं लग रही थी कि इतना जल्द होगा, लेकिन आज ही ये घोषणा कर दी गई कि 13 तारीख को यानी परसों वहां पे 38 ये बड़गाम में है सारे के सारे 38 बूथ्स जहां पे ज्यादा हिंसा हुई थी, तो वहां पे रीपोल कराया जाएगा परसों।
ये जो दूसरा चुनाव होना था उपचुनाव उसकी डेट टाल दी गई है और रीपोल के लिए इतनी जल्दी तारीख घोषित कर दी गई है।
यहाँ पे सभी जो विश्लेषक हैं इस बात पर हैरान हैं, खासे रीजन के लिए जिस कारण के लिए दक्षिणी कश्मीर के चुनाव डिले किए गए थे, पोस्टपोन किए गए थे, वही कारण बड़गाम में सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां पे हिंसा हुई है। वहां पे तो अभी इसका सिर्फ खदशा है, खतरा है, लेकिन यहाँ बड़गाम में तो हिंसा हुई है और जो 8 लोग मारे गए हैं उनमें से 7 इन्हीं मतदान केंद्रों के आसपास मारे गए थे, तो ये अजीब सा लग रहा है। लेकिन इसमें सरकार की ये भी मजबूरी हो सकती है क्योंकि इन जो चुनाव हुए हैं इन इनमें इनका एक संवैधानिक मजबूरी भी रहती है क्योंकि जीरो पोल जब 10 या 12 से ज्यादा मतदान केंद्रों पे होता है तो इसकी संवैधानिक मजबूरी भी बनती है कि पोलिंग को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के साथ जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें बताया कि पोलिंग को कंप्लीट करना इनकी संवैधानिक मजबूरी होती है, इसलिए उन्होंने सुरक्षा जो है एजेंसियों के साथ मशवरा करके उनके साथ सलाह करके ये देखा है कि वहां पे एडिशनल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और वहां पे जो है पॉलिटिशियंस को भी कहा गया है कि वो सतर्क रहें। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होगा ये परसों क्योंकि अभी 2 ही दिन गुजरे हैं इतने बड़े पैमाने पे हिंसा हुई।
कश्मीर में श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के 32 पोलिंग सेंटर पर परसों यानी 13 तारीख को दोबारा मतदान कराए जाएंगे। और अब खबर झारखंड से। झारखंड की राजधानी रांची में आज दोपहर एक हिंदुवादी संगठन के लोगों के जुलूस के दौरान आपत्तिजनक गाना बजाए जाने को लेकर 2 संप्रदाय के लोगों में झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उधर देवघर जिले के सारठ में हिंदू महासम्मेलन को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को हिंदुओं का अधिकार बताया है। रांची से रवि प्रकाश।
यह उस गाने की चंद लाइनें हैं जिसको लेकर मुसलमानों में गहरी आपत्ति है। आज दोपहर जोहर की नमाज के वक्त कुछ लोगों ने इसी गाने को एकरा मस्जिद के सामने बजाना शुरू कर दिया। नमाज के बाद मुसलमानों ने इसको लेकर आपत्ति की तो हाथापाई शुरू हो गई। देखते ही देखते रांची का महात्मा गांधी मार्ग रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दुकानें बंद कर दी गईं और उग्र भीड़ ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। हमले में कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है। अंजुमन इस्लामिया के सदर इब्रार अहमद ने बीबीसी को बताया कि जुलूस निकाल रहे लोगों के हाथों में तलवारें भी थीं।
पूरा जो है तलवार वगैरह सब लिए हुए थे और एक गाना बजता है बहुत माने अजीब सा और जश्नगुल है माने गाना, तो बार बार लोगों ने कहा है कि ये गाना वाला नहीं बजना चाहिए
जी।
तो वही कहाँ से लेकर तो जुलूस आ रहा था, वो लोग डोंडाई की तरफ से आ रहा था, तो एक जगह हमको लग रहा है कि वो लोग आए अकरा मस्जिद के पास, तो वहाँ पे वो गाना वाला बज रहा था, तलवार वार भी लहरा रहे थे, तो वहाँ पे कुछ एक झड़प हुआ।
रांची के SDO भोर सिंह यादव ने बीबीसी को बताया कि उस संगठन के लोगों ने जुलूस निकालने की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली थी, लिहाजा साक्षियों को जुटाया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर इस मामले में FIR भी कराया जाएगा। हम लोग स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। भोर सिंह यादव ने बताया
एक जुलूस निकाला जा रहा था
जी,
जो कि जिसके लिए कोई अनुमति नहीं थी, और उसके क्रम में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे कि शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया गया। तो अभी जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और अभी सब कुछ नॉर्मल ही है।
उधर झारखंड के देवघर जिले में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को हिंदुओं का नैसर्गिक हक बताया। दरअसल रामनवमी के पहले से ही झारखंड के अलग अलग शहरों से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव की खबरें मिल रही हैं। हजारीबाग में तो पुलिस ने एक मुस्लिम बहुल गांव से रामनवमी का जुलूस निकालने पर अड़े पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा को गिरफ्तार भी किया था। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह इस पर कड़ी नजर रखे ताकि सांप्रदायिक सौहार्द कायम रह सके। रवि प्रकाश, BBC रांची।
और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां आदित्यनाथ योगी सरकार की आज दूसरी कैबिनेट बैठक हुई जिसमें सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली देने, गन्ना किसानों को भुगतान रोकने पर चीनी मिलों पर कार्रवाई करने और पिछली सरकारों में हुए घोटालों की CAG से जांच कराने जैसे फैसले इसमें शामिल हैं। और जानकारी के साथ लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
ठीक एक हफ्ते बाद मंगलवार के दिन ही योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट के सहयोगियों के साथ आज फिर बैठक की और कई नए फैसलों पर मुहर लगाई। किसानों पर सरकार एक बार जहां फिर मेहरबान रही, वहीं राज्य में बिजली समस्या को दुरुस्त करने के बारे में भी कई पहल की है। सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया,
ये सरकार गरीब की सरकार है, ये सरकार किसानों की सरकार है, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। एक और फैसला हमारी सरकार ने किया है गन्ना किसानों से संबंधित, उसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि गन्ना किसानों को जो हमने तय किया है अविलंब जो पूर्व का भुगतान है वो 120 दिन के अंदर हो और वर्तमान जो उनका भुगतान है वो 14 दिन के अंदर हो, और उसमें अगर कहीं कोई लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बोला टोटल अगर हम देखें तो 4,303 बकाया है, जिसकी हम अगर प्रतिशत में देखें तो जो भुगतान हुआ है वो 81% भुगतान हो चुका है, तीनों चारों साल का है।
गन्ना किसानों के अलावा सरकार ने आलू किसानों को भी राहत दी है। श्रीकांत शर्मा का कहना था कि किसानों से 487 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीद तत्काल प्रभाव से शुरू की जाएगी। इसके अलावा बिजली के बकाया बिलों को लेकर भी राहत दी गई है।
बिलों के भुगतान में कई बार भुगतान के बाद भी कुछ शिकायतें आ रही थी कि उनके खाते उनके बिल में पिछला बिल भी जुड़ गया था, तो इसलिए हमारी सरकार ने फैसला लिया है प्रदेश के सभी ग्रामीण एवं शहरी निम्न एवं मध्यम घरेलू कमर्शियल उसमें एक हम योजना लेकर आ रहे हैं कि जो भी सरचार्ज है वो हम उनका माफ करेंगे।
सरकार ने पिछली सरकारों के कार्यकाल में हुई कथित अनियमितताओं पर भी सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि इनकी जांच कराई जाएगी। जांच के दायरे में खास तौर पर विकास प्राधिकरणों और अवैध खनन को रखा गया है। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया,
कैग को या कोई भी केंद्र एजेंसी जिसको अनुमति मांगती है उसको हम लोग तुरंत दे देंगे, तो राज्य सरकार ने आज इसका अनुमोदन किया है।
लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने अभी तक कोई नया नीतिगत फैसला नहीं लिया है बल्कि पुराने फैसलों को ही लागू कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह का कहना है कि गांवों को 18 घंटे और जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली देने का काम पिछली सरकार शुरू भी कर चुकी थी।
जिनका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी की सरकार, ये सारे के सारे काम अखिलेश यादव जी की सरकार के किए हुए हैं और प्रक्रिया में है। अभी भारत सरकार मोदी जी की बनी है, 3 साल लोग हैं, कोई भी अपनी स्कीम का उद्घाटन नहीं कर पाए। जो बिजली का मामला है वो तो 2018 की बात कर रहे थे, हम तो 2017 के लास्ट से ही 24 घंटे बिजली देने का इंतजाम कर चुके हैं। योगी जी का आदेश और अखिलेश यादव जी की सरकार का आदेश अगर आप निकाल लेंगे तो उसी आदेश को रिपीट कर दिया गया है।
बहरहाल जानकारों का कहना है कि फैसलों से ज्यादा अहम उन पर अमल करना और कराना है। फिलहाल सरकार के पास काम कराने वाले अधिकारियों की वही टीम है जो पिछली सरकार में काम कर रही थी। अब देखना यह है कि नई सरकार उन्हीं अधिकारियों में नया जोश भरती है या फिर अधिकारियों की कोई नई टीम तैयार करती है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां शराब की दुकानों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। प्रदेश में अगले साल चुनाव है और महिलाओं के बढ़ते विरोध को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने शराबबंदी की बात की है। भोपाल से शुरे नियाजी।
पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में महिलाओं ने शराब दुकानों के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। 1 अप्रैल को नए ठेके मिलने के साथ ही नई शराब की दुकानें खुल जाती हैं। इस साल भी ऐसी कई दुकानें रिहायशी इलाकों में खुल रही थीं, जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। हाल ही में रायसेन जिले के बरेली गाँव में महिलाएं शराब की दुकान उनके इलाके में खुलने से नाराज हो गयी। स्थिति यह हुई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कमोबेश यही स्थिति दूसरे शहरों की भी है, जहां महिलाएं इसका विरोध बढ़ चढ़कर कर रही हैं। विरोध कर रही एक ऐसी ही महिला का कहना है,
इतना गंदा माहौल हो गया है 2 दिन से कि हम लोग वहां खड़े रहने में हमको शर्म आ रही है। हमारा जो घर है, हमारी कॉलोनी जिसमें कि हम बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं, वहां पे खड़े होने में हमको शर्म आ रही है, हमको डर लग रहा है, हम अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेज पा रहे।
मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के विरोध को देख रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान जनसंवाद कार्यक्रम में चरणबद्ध तरीके से शराब पर पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी है।
नर्मदा जी के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर दूर तक जितनी दारू की दुकानें थी, 1 अप्रैल से सारी बंद कर दी गई है। कलारियां बंद कर दी गई है, वो दुकानें बंद कर दी गई है। जहां कॉलेज है, जहां स्कूल है, जहां पवित्र धार्मिक स्थल है, कोई दारू की दुकान नहीं होगी। ये निर्देश भी मैंने दे दिए हैं, ताकि जगह जगह जहां ऐसी दिक्कत आई है, उस दिक्कत और परेशानी को भी दूर किया जा सके। और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से हर साल दारू की दुकानें बंद करते जाएंगे और कम करते करते मध्य प्रदेश को संपूर्ण नशा मुक्ति की तरफ हम ले जाएंगे।
लेकिन विपक्षी कांग्रेस इसे सही नहीं मान रहा है। शराब के खिलाफ मुहिम चला रही प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीप्ति सिंह कहती हैं,
धीरे धीरे नहीं, मध्य प्रदेश में शराब पूर्णतः बंदी होनी चाहिए शराब की, और धीरे धीरे का सवाल नहीं है। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को ये बात मालूम है कि इससे कई घर बर्बाद होते हैं, बच्चे बर्बाद होते हैं, महिलाएं बर्बाद होती हैं, लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, उसके बाद धीरे धीरे क्यों।
नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने नर्मदा के किनारे बसे शहरों से शराब दुकानों को बंद करा दिया है। इससे सबसे ज्यादा खुश उस क्षेत्र की महिलाएं हैं, जिन्हें शराब की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। शिवराज सिंह चौहान यह महसूस कर रहे हैं कि महिलाओं का समर्थन अगर वो अगले चुनाव में चाहते हैं तो उन्हें यह कदम उठाना ही पड़ेगा, लेकिन राजस्व हानि के चलते वो इसे सिलसिलेवार तरीके से लागू करना चाहते हैं। शुरहनियाजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
तो आपने सुनी भोपाल से शुरनियाजी की रिपोर्ट, और अब खेल समाचार लेकर के आ गए हैं वैभव दीवान स्टूडियो में।
आईपीएल सीजन 10 का आज 9वां मैच खेला जाएगा। आमने सामने जहीर खान और महेंद्र सिंह धोनी है। ये मैच राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ है। पुणे के मैदान पर खेले जाने वाले इस मैच में टॉस जीतकर पुणे ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। पुणे की टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ का पेट खराब हो गया, तो इस टीम को आज कैप्टन करेंगे अजिंक्य रहाणे, और टीम में उनके साथ हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनका सपोर्ट है। साथ ही टीम में इमरान ताहिर, बेन स्टोक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। वहीं दिल्ली के पास सैम बिलिंग्स, युवा ऋषभ पंत और करुण नायर हैं, और कप्तान जहीर खान है। बट बुरी खबर यह है कि मनोज तिवारी, जो दिल्ली के खिलाड़ी हैं, पिछले मैच में अच्छा खेले थे, उनके पिताजी का आज सुबह निधन हो गया, तो वो टीम के साथ नहीं है। अभी तक के हुए आईपीएल में दिल्ली की टीम 1 मैच खेली है जो वो हारी है। पुणे ने 2 मैच खेले हैं जिसमें 1 में वो जीते हैं, 2 में वो हारे हैं। आमने सामने ये दोनों टीमें 2 बार आई हैं, दोनों में जीत पुणे की हुई है। पुणे की विकेट पर हुए T20 मैचेस में जब भी मैचेस हुए तो दूसरी बारी जिसने बल्लेबाजी की है उसने जीत दर्ज की है। तो ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है, बस शुरू हो जाएगा 10 मिनट में।
बहुत शुक्रिया वैभव खेल समाचारों के लिए, और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, तो आइए प्रमुख समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। भारत सरकार ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए हर कदम उठाएगी। कुलभूषण जाधव को कल पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। रूस का कहना है कि इस हफ्ते के आखिर में रूस, सीरिया और ईरान के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है कि लीबिया में बंधक बनाए गए अफ्रीकी प्रवासियों को गुलामों की तरह बेचे जाने की रिपोर्ट मिली है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बीते हफ्ते हुए लॉरी हमले के संदिग्ध को कोर्ट में पेश किया गया। उनके वकीलों का कहना है कि उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय और आज स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने। आपसे कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में फिर मुलाकात होगी। तब तक खबरें देखनी हैं तो आइए bbchindi.com पर। निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति। नमस्कार।